अब हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को परमात्मा की श्रेणी से आउट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप सबको पता ही है कि गौतम सिद्धार्थ जो है सिद्धार्थ गौतम वो गया था उसके लिए भगवान को ढूंढने गया था वो, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि दुख का कारण क्या है। जिसको यही नहीं पता कि दुख का कारण है क्या और क्या कौन है भगवान, उसे तो ये भी नहीं पता था। और उसने वो गया ढूंढने, उसने बहुत सारी चीज़ें की, भूखा रहा, प्यासा रहा, वो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग साधनाएं करता रहा, उसे नहीं पता चला कि भगवान कौन है। फिर उसने अंत में निष्कर्ष पे वो ये पहुंचा कि कोई भगवान है ही नहीं, पर वो कहता है कि कर्म है, कर्म का सिस्टम है, क्योंकि अब वो पैदा हिंदू में हुआ था तो उसे मतलब कर्म का उसमें एम्बेडेड रहा होगा। तो वो कहता है कि जी कर्म तो जी है, कर्म से तो बचने का है नहीं उपाय, और कर्म कम करने का भी उसे समझ नहीं आया, कैसे कम कैसे होते हैं, कौन करता है, उसे समझ नहीं आया, उसे पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। तो वो इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि कर्म तो है और लेकिन परमात्मा कोई नहीं है। तो परमात्मा कोई नहीं है, और उसके बाद उसने ये भी कहा कि वो दोबारा आएगा। तो अब वो दोबारा आएगा इसका मतलब हो सकता है उसे मोक्ष ना मिला, उसे पता है कि उसे मोक्ष नहीं मिला, उसे कुछ पता ही नहीं था। बेसिकली उसे कुछ पता ही नहीं चला। थोड़ा बहुत जो भी इधर उधर से उसने ध्यान की विधियाँ, इधर उधर की सारी ध्यान की विधियाँ महादेव की हैं, शिव शंकर महाकाल की हैं। तो इधर उधर से ध्यान की, जो सांसों पे सांसों पे ध्यान लगाओ, सांसों पे, ये सारी चीज़ें शिवजी की हैं। ये सारा ध्यान जो है वो शिव शंकर महाकाल का दिया हुआ है। वो कौन होता है ध्यान सिखाने वाला? सबने अपनी स्टैम्पे लगा दी हैं, सबने अपनी कि जी उसका उस वो कौन होता है ध्यान करने वाला? उसको तो कुछ पता ही नहीं, तो उसको तो ये तक नहीं पता कि परमात्मा कौन है। और उसके बाद उसे जी बताया हुआ है नारायण का अवतार, क्योंकि ये एक ही ग्रुप था ना विष्णु का, जैसे मैंने आपको बताया। तो जिस जो भगवान में बिलीव ही नहीं करता, जो कहता है कि भगवान है ही नहीं, जो नास्तिक है बेसिकली, तो उसको परमात्मा की श्रेणी में डालना, चलो इंडिया में तो उसे नहीं मानते, फिर भी मुझे कई लोग शायद मानते हैं कि जी बुद्ध की मूर्तियां उन्होंने लगाई हुई हैं कि वो भगवान है। पर आई थिंक और जगहों पे तो उसको, जैसे चाइना वगैरह में तो भगवान मानते हैं बुद्ध को। तो या तो उसे पता ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं है कि कौन है भगवान, क्योंकि इंडिया से निकाला हुआ था वो, तो इंडिया में तो उसे होने नहीं दे, क्योंकि इंडिया वालों को तो पता कि ये तो ऐसे ही था आया हुआ, जो नास्तिक था। तो उन लोगों ने, उनके पास तो वैसे भी कुछ नहीं था चाइना के पास, वो तो उन्होंने कहा यही यही ठीक है, यही भगवान होगा। एक और बात है कि देवदत्त की अगर आपने कहानी सुनी हो कि देवदत्त उसे परेशान करता रहता था वगैरह वगैरह जो भी है, तो किसी ने फिर एक बार पूछा बुद्ध के, ये आपके पीछे क्यों पड़ा रहता है, मतलब आप इसे कुछ बोलते भी नहीं हो क्या? तो बुद्ध कहता है ये इसने पिछले जन्मों में, बुद्ध ने इसके साथ कुछ बुरा किया था तो ये उसका बदला ले रहा है, उस बुद्ध के कर्म कट रहे हैं। तो इसका मतलब तो बुद्ध भी, अगर बुद्ध के कर्म कट रहे हैं तो बुद्ध तो खुद ही कर्मों में बंधा हुआ है। तो जो खुद ही कर्मों में बंधा हुआ है वो तो परमात्मा हो ही नहीं सकता, बात ही खत्म हो गई। ऐसे ही जैसे राम को वो करना पड़ा था, क्या कहते हैं, ब्रह्म हत्या का पश्चाताप करना पड़ा था, उसे कर्म लग जाते हैं वगैरह वगैरह, स्टफ लाइक दैट। तो क्योंकि ये लोग परमात्मा है ही नहीं, इन्हें तो कुछ, ये तो कर्मों से बंधे हुए लोग हैं। तो इसीलिए राम कृष्ण नारायण विष्णु परमात्मा की श्रेणी से आउट होता है। कृष्ण के जन्म से पहले वो नर और नारायण थे, अर्जुन और कृष्ण, जब वो शिव शंकर महाकाल की आराधना कर रहे थे, तो वो शिव शंकर महाकाल की आराधना कर रहे थे, कर रहा था विष्णु और अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन पिछले जन्मों में, और अगले जन्म में कृष्ण कहता है कि उसी ने सृष्टि की रचना की है। बताओ फ्रॉड का लेवल देखो आप, मतलब लेवल ऑफ फ्रॉड देखो, ठीक है, किस लेवल का झूठ फैलाया हुआ है इन्होंने महादेव की आराधना से करते समय। और उसमें नर नारायण में वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल साधारण इंसान है, उसके बाद अगले ही जन्म में वो कह रहा है कि वो तो जी वो है। इस उससे प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से गौतम सिद्धार्थ बुद्ध परमात्मा की श्रेणी से आउट हो जाता है। अब आई बात महावीर की। वर्धमान महावीर की, उस वो अब कैसे है, कैसे परमात्मा की श्रेणी से आउट होता, मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से। तो उसको अगर आपको पता, उसके कानों में कीलें ठोकी गई थी और वो नंगा रहता था। सबसे पहली बात, वो कौन परमात्मा होगा जो आएगा धरती पर नंगा घूमेगा, उसके कानों में लोग कीलें ठोकेंगे और वो चुपचाप, और वो क्यों, और उसके बाद वो क्यों, उसने उसके कीले ठोकी गई, क्योंकि जी वो स्टोरी की जी उसको याद आया कि पिछले जन्मों में उसने किसी शूद्र ने वेद और पुराण पढ़ सुन लिए थे। तो ये राजा था वर्धमान महावीर, और इसने उसके कानों में शीशा गरम फुकवाया, डलवाया था। तो इस वजह से, इसके कर्म कटने की वजह से इसके कानों में कील ठोकी गई है। ये लोग ऊपर से विजन दे देते हैं कि जिससे थोड़ा इंसान को एक राहत मिल जाए कि उसी के कर्म है, बस ये बात है। एनीवेज, तो इस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से भी महावीर वर्धमान परमात्मा की श्रेणी से आउट होता है। इसको भी, महावीर को, वर्धमान को भी नारायण का अवतार बताया हुआ है, क्योंकि ये सारे विष्णु की टीम के लोग थे ना, जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ अब तो। तो इन लोगों ने, सबने अपने आप को नारायण बता देते हैं, या प्रॉफिट बता देते हैं, या देवी देवता, या नारायण की वाइफ वगैरह, स्टफ लाइक दैट, ऐसे ऐसे करके इन लोगों ने, या बेस्ट फ्रेंड, या सिक्योरिटी गार्ड, या कुत्ता, या नौकर विष्णु का, तो ऐसे इन लोगों ने आपस में सब कुछ, इनका एक ग्रुप बना हुआ था। तो ये सारे लोग जो है, इससे, इस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से, और महावीर वर्धमान का भी है कि वो भी दोबारा आएगा, तो उस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से महावीर वर्धमान भी परमात्मा की श्रेणी से आउट होता है। बहुत ही साधारण तरीके से एक साधारण किसी को भी समझ आ सकता है कि ये परमात्मा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। किसी जाहिल से जाहिल से जाहिल, कोई बेवकूफ से बेवकूफ गधे को भी अगर ये बात बता दी जाए, वो भी कहेगा ये तो परमात्मा हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता परमात्मा।